विज्ञानमय कोश की साधना, करुणा का जागरण।
परम पूज्य गुरुदेव के उद्बोधनों की यह विशिष्टता रही है कि अध्यात्म की गहन साधनाओं को वे इस तरह से समझाते हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी उनको सहजता से समझ पाना और उनको अपने जीवन में आत्मसात कर पाना संभव हो पाता है। प्रस्तुत उद्बोधन में वे इसी शैली में विज्ञानमय कोश की विशिष्ट साधना और उसको करने से व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में चर्चा करते दिखते हैं।
साधना और उसका उद्देश्य बताने से पहले वे श्रोताओं को यह बताते हैं कि साधना करने से पहले हमारे व्यक्तित्व में एकाग्रता के गुण की अत्यधिक आवश्यकता होती है।
वे कहते हैं कि जहां व्यक्ति का मन उस तरह से लग जाता है जिस तरह से अर्जुन का मन और दृष्टि मछली की आंख की ओर एकाग्र हो गए थे, तो वहीं पर उसके लिए सफलता को प्राप्त कर पाना संभव हो पाता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को।
मनुष्य के भविष्य का आधार। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवियो भाइयो, राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी अपने समय में बड़ी योग्य लड़की थी।
उसके पिता राजा द्रुपद उसके लायक वर तलाश करने के लिए बड़े व्याकुल थे कि जैसी योग्य हमारी लड़की है वैसा ही लड़का मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत तलाश किया पर वे एक बात का अंदाज नहीं लगा सके कि किसका भविष्य अच्छा है। आज कोई आदमी सुखी है,
आज कोई आदमी स्वस्थ निरोग है,
आज कोई आदमी अच्छा है, पर इससे यह अंदाजा तो नहीं लगता कि कल क्या होने वाला है। कल की बात देखनी पड़ती है, फिर लड़की की बात तो जिंदगी भर की है। जिंदगी में आज लड़का अच्छा है, कल खराब हो जाए, कल दहकी रहे, उसकी उन्नति के द्वार बंद हो जाएं, बेटी भी परेशान हो और जमाई भी परेशान हो, तो बात कैसे बने।
राजा द्रुपद इसी फिक्र में थे कि कोई ऐसा लड़का तलाश करें जिसका भविष्य अच्छा हो, चाहे आज की स्थिति कमजोर हो पर भविष्य अच्छा हो। मित्रों, भविष्य को तलाश करने के लिए उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया और यह पूछा, भगवन
एक बात बताए कि यह कैसे मालूम पड़े कि किसी आदमी का भविष्य खराब है या अच्छा है। जन्मपत्री की बात चली तो उन्होंने कहा कि यह बेकार की बात है। जो ग्रह लाखों करोड़ों मील दूर रहते हैं वे आदमी पर क्या असर डाल सकते हैं।
अगर डालेंगे तो सारी जमीन सारी सृष्टि पर डाल सकते हैं,
पूरी मनुष्य जाति पर असर डाल सकते हैं।
केवल एक आदमी पर ही दृष्टि डालें यह गलत है,
ऐसा हो नहीं सकता।
यह बिल्कुल गलत है, बेसिलसिले की बात है।
हम किसी की जन्मपत्री देख करके यह नहीं बता सकते कि इस आदमी का भविष्य खराब है या अच्छा है। हाथ देख करके भी हम यह नहीं बता सकते कि इस आदमी का भविष्य खराब है कि अच्छा है, तो फिर कैसे पता चलेगा कि जिससे हम अपनी लड़की का ब्याह करेंगे उसका भविष्य अच्छा होगा या खराब होगा। द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से कहा कि एक बात जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आदमी का भविष्य अब खराब होने जा रहा है या अच्छा होने जा रहा है,
बताइए साहब, वही उपाय बताइए।
द्रोणाचार्य ने कहा कि हमें यह देखना चाहिए कि आदमी मन लगा करके कोई काम करता है या नहीं। जो आदमी मन लगा करके कोई काम नहीं करता है तो बेटे उसमें उसका नुकसान होगा,
काम खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उथला हो जाएगा, उसकी निंदा होगी,
उसका बॉस नाराज हो जाएगा और यह कहेगा कि हमारा काम बिगाड़ दिया,
उसका काम अस्त व्यस्त हो जाएगा और जहां कहीं भी जाएगा असफलता मिलेगी।
ऐसा व्यक्ति शरीर से तो काम कर रहा है पर उसका मन कहीं और घूम रहा है,
ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल सकती। राजा द्रुपद,
अगर आपको लड़का तलाश करना हो तो ऐसा तलाश करना जो मन लगा करके अपने काम में लग जाता हो,
जहां मन लगे वहां मिलेगी सफलता। मित्रों,
अपने काम से मेरा मतलब भौतिक से भी है और आध्यात्मिक से भी है।
आध्यात्मिक सफलताएं आपको तब मिलेंगी जब उस काम में आपका मन लगे।
अगर मन नहीं लगा तो बेगार भुगतने के तरीके से, लकीर पीटने के तरीके से कोई भजन पूजन कर लेंगे तो इससे क्या परिणाम निकलने वाला है और क्या फल मिलने वाला है?
कुछ परिणाम नहीं निकलेगा।
लकीर पीटने से किसी को क्या मिला है? कुछ नहीं। लकीर पीटने के हिसाब से घर का कोई काम करते रहें तो बेटे क्या मिलने वाला है? कुछ सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप उस काम में अपने को घुला नहीं देंगे,
गवा नहीं देंगे, तन्मय नहीं हो जाएंगे। मित्रों, यही सिद्धांत बहुत देर तक राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य समझाते रहे। राजा बोले, महाराज जी, यह बताइए कि मैं कैसे जमाई तलाश करूँ,
कैसे अपनी लड़की का ब्याह करूँ। द्रोणाचार्य ने कहा कि इसके लिए कोई परीक्षा रखनी पड़ेगी जिससे यह पता चलेगा कि कोई आदमी मन लगाकर काम करता है कि नहीं करता। हमको तो मालूम नहीं है कि मन की परीक्षा क्या हो सकती है। उन्होंने एक मछली का इंतजाम किया जो एक चक्र के ऊपर घूमती थी जैसे कि पंखा घूमता है। उस पर उन्होंने यह शर्त रखी कि जो कोई मछली की आंख में तीर मार देगा, बस, उसको हम जान लेंगे कि यह व्यक्ति मन लगाना जानता है और निशाना लगाना जानता है। मन लगाना और निशाना लगाना एक ही बात है। मन लगाने और निशाना लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मन लगाना एक कला है।
मित्रों, स्वयंवर का इंतजाम हुआ।
दूर दूर के राजाओं व राजकुमारों ने सुना कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है।
हजारों राजकुमार पहुंचे।
उन्होंने कहा कि द्रौपदी बड़ी योग्य है, हम उससे शादी करेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा, मछली की आंख में आप निशाना लगा सकते हैं तो द्रौपदी का स्वयंवर हो सकता है और आपके साथ शादी हो सकती है। उन्होंने देखा कि बहुत से राजकुमार आए हुए हैं, इससे बड़ी भीड़ लगेगी और समय भी खराब होगा। आचार्य ने कहा, पहले आप हमारी बात का जवाब दीजिए, फिर हम देखेंगे कि आप निशाना लगा सकते हैं कि नहीं।
एक राजकुमार आगे आया।
द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, अच्छा, यह बताए कि चक्र में घूमने वाली मछली की क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं। उसने कहा, हमको मछली की टांगे दिखाई पड़ती हैं, हाथ पैर दिखाई पड़ते हैं, सिर दिखाई पड़ता है, तो आप भाग जाए, आप निशाना नहीं लगा सकते।
नहीं साहब, हम तो लगाएंगे, तो लगाकर दिखाइए।
निशाना लगाया पर लगा नहीं। जब आपको सारी मछली दिखाई पड़ती है तो भला आप निशाना कैसे लगा सकते हैं।
दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया,
सबसे सवाल पूछते चले गए और जिन्होंने कहा कि मछली का ये हिस्सा वो हिस्सा दिखाई देता है, उनको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें तीर चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती।
सफलता पाने की कला। मित्रों, सभी राजकुमार भागते चले गए। आखिर में एक लड़का आया। उसने कहा, गुरुदेव,
मैं निशाना लगाने की कोशिश करूंगा।
बेटे,
निशाना लगाने से पहले यह बताओ कि तुमको पानी की छाया में मछली का क्या क्या है भाग दिखाई पड़ता है।
गुरुदेव,
हमें तो केवल मछली की आंख दिखाई पड़ती है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता।
ठीक है बेटे,
अपना तीर उठाओ और निशाना लगाओ।
अर्जुन ने निशाना लगाया और तीर ठीक निशाने पर बैठा।
क्यों साहब, निशाना लगाने की कला ठीक है।
बेटे,
अच्छा काम करने की और सफलता पाने की दुनिया में कोई कला नहीं है। सफलता पाने की एक ही कला है कि आप सारा मन लगा करके किसी काम में अपने आप को खो देते हैं, गंवा देते हैं, भुला देते हैं। उस काम में इतने तन्मय हो जाते हैं कि आप अपने होश हवाश गायब कर दें और वही चीज सामने रह जाए और दूसरी रहे नहीं, तो आपको सफलता मिल सकती है।
फिर चाहे वे सफलताएं भौतिक जीवन की हों अथवा आध्यात्मिक जीवन की। मित्रों,
कल मैं आपको तीन कोशों की बाबत बता रहा था। ये तीनों के कोश हमारे स्थूल शरीर से संबंधित हैं। हमारा एक कोश अन्नमय कोश है, जिसके बारे में बता रहा था। अगर आप अन्नमय कोश ठीक रखें तो आपकी सेहत अच्छी रह सकती है और लंबे समय तक आप जिंदा एक रह सकते हैं। आलस्य और प्रमाद को हटा देने के पश्चात आप किस तरह से दुनियावी सफलताएं पा सकते हैं, इस बारे में मैंने बाटा का हवाला दिया था, हजारी किसान का हवाला दिया था और पिसनहारी का हवाला दिया था। श्रम का देवता जो अपने पसीने की बूंदों के रूप में हीरे और मोती टपकाता रहता है, आप उन हीरे मोतियों को समेट कर रख सकते हो तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप मालदार हो करके रहेंगे। जो भी आपकी मालदारी की इच्छा हो, जैसे कि विद्या की दृष्टि से आप मालदार होना चाहेंगे तो विद्वान हो जाएंगे। आप पैसे की दृष्टि से मालदार होना चाहेंगे तो पैसे वाले हो जाएंगे।
आप शरीर की दृष्टि से मालदार होना चाहेंगे तो सेहत वाले हो जाएंगे।
जो भी आप होना चाहेंगे हो जाएंगे, पर शर्त यह है कि आप शरीर को बर्बाद न करें, तबाह न करें। इसको छेनी हथौड़ा लेकर के आप तोड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, कृपा कीजिए इसको तोड़िए मत। आप इसको बना नहीं सकते, भगवान ने जो शरीर दिया है आप उस तरीके से तमीज से रहिए, होशियारी से रहिए, भले मानुष के तरीके से रहिए।
इसको बर्बाद करने पर उतारू मत रहिए।
अगर आप ये कर सकते हो तो अन्नमय कोश की साधना हो जाएगी।
जो मिला पहले उसका करें उपयोग। महाराज जी, कोई परोक्ष साधना बताइए।
बेटे, मैं बता दूंगा, मेरा प्राण क्यों खाता है।
नहीं साहब, कोई ऐसी विधि बताइए, कोई ऐसा जादू बताइए जो शॉर्टकट से सिद्धि दिला सके। बेटे,
जादू पीछे पूछना, जादू पूछने से पहले यह देख कि जो अन्नमय शरीर है, व्यवहारिक जीवन में उसकी उपासना कैसे की जा सकती है। जादू तो जामन है, दूध में जामन डाल देते हैं तो दही जम जाता है।
नहीं साहब, जामन लाए। बेटे, जामन तो हमला देंगे, पर पहले तू दूध का तो इंतजाम कर। महाराज जी,
दही नहीं है तो कैसे जमेगा। अच्छा, तेरे पास दही नहीं है तो मैं और तरीके बता सकता हूँ। चांदी की कोई चीज ले और दूध में डाल दे,
चांदी की वजह से भी दही जम जाएगा। महाराज जी, चांदी न हो तो फिटकरी का जरा सा टुकड़ा ले ले और वन बारीक पीस करके दूध में डाल दे तो दही जम जाएगा।
बाजार में पंसारी की दुकान पर एक तबाशीर आता है, उसे पीसकर दूध में बुर्क दे तो भी दही जम जाएगा।
महाराज जी,
अगर कुछ भी ना हो
तो बेटे
ठंडक में रहने दे तब भी दूध जम जाएगा।
अच्छा महाराज जी, यह बताइए कि कोई सा जामन न लाऊं तो दूध जमेगा क्या? बेटे
तू तो जामन के ही पीछे पड़ गया है, दूध का इंतजाम है नहीं, दोहनी तेरे पास है नहीं, जमावन है नहीं।
फिर क्यों रट लगाए हुए है कि जामन बताइए, विधि बताइए, साधना बताइए। मित्रों
साधना यह है कि जिसकी वजह से हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो शक्तियां हैं, जो सामर्थ्य है, जो साधन है, उनका हम ठीक तरीके से उपयोग कर सके तो बेटे हम निहाल हो सकते हैं। आपको नई चीजें पाने की जरूरत क्या है? जो चीजें पहले से आपके पास हैं, पहले उनको तो इस्तेमाल कर लें। नहीं साहब,
नई चीजें दिलवाए, नया पैसा दिलवाए। बेटे हम तुझे नया पैसा दिलवाएंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है, पर पहले यह तो बता कि जो पैसा तुझे पहले
से मिलता रहा है उसको तूने खर्च कहाँ किया? बस हम तेरी तमीज, तेरी औकात, तेरी अक्ल और तेरी पात्रता इस आधार पर आंकेंगे कि तुझे जो मिलता रहा है उसे तूने खर्च कहाँ किया,
पहले यह बता।
नहीं साहब, आपको इससे क्या मतलब है? हम चाहे जैसे खर्च करेंगे,
आप तो बस पैसा दिलवाए।
नहीं, हम नहीं दिलवाएंगे, तू बेकार की बातें करता है। पहले यह बता कि तू इसे कहाँ खर्च करता है और किस काम के लिए मांगता है। नहीं साहब, हम चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं। नहीं बेटे, चाहे जैसे नहीं खर्च कर सकते, पैसा पात्रता के हिसाब से मिलता है।
गांधी जी को लोगों ने पैसे दिए,
उनमें से एक पैसा जमीन पर गिर पड़ा। बड़ी भारी भीड़ थी, गांधी जी जमीन पर बैठ गए और जमीन की रेत में से उस पैसे को तलाश करने लगे। लोगों ने पूछा, एक पैसे के लिए आप क्यों समय खराब करते हैं? हम आपको दूसरा पैसा दे देंगे, आप चलिए, यहाँ समय खराब होता है। उन्होंने कहा, आपके लिए इस एक पैसे की कीमत कुछ नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने अपना पेट काट करके इस जिम्मेदारी से मुझे दिया था कि मेरे पैसे का सही इस्तेमाल होगा, उसको अब मैं क्या जवाब दूंगा? आप यह बताए कि जिसने यह समझकर दिया था कि गांधी इस पैसे का ठीक से इस्तेमाल करेगा और मैं ठीक इस्तेमाल नहीं कर सका,
मैंने इसको गुमा दिया, अब मैं उसको क्या जवाब दूंगा? मित्रों
आपको तरह तरह की चीजें मांगने से पहले, तरह तरह की फरमाइशें करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि आप में इतनी तमीज, इतनी योग्यता और पात्रता है कि कोई चीज भगवान आपको दे तो भगवान की दी हुई चीजों का आप ठीक से इस्तेमाल कर सकें। आप अपने हाथ पांव से कमाए और बिगाड़िए, भगवान से आपको क्या मतलब है? नहीं साहब,
हम तो भगवान जी से मांगेंगे, सिद्धपुरुष से मांगेंगे।
हाँ, सिद्धपुरुष और महात्मा भी दे सकते हैं, देवताओं भी दे सकते हैं, देते हैं और दे रहे हैं, लेकिन क्या यह बताएगा कि क्यों देते हैं? नहीं महाराज जी, आपको क्या मतलब है? नहीं बेटे, हमको मतलब है, हम तेरी औकात, तेरा व्यक्तित्व, तेरी तमीज, तेरा ज्ञान और तेरी पात्रता को इस बात से नहीं जान सकते कि तूने क्या कमाया है।
लेकिन तूने खर्च कैसे किया, यह सीधी बात बताओ।
तेरे पास जो अक्ल है उसे कहाँ खर्च करना है?
अगर यह बात बता देगा तो मैं तुझे नई अक्ल दूंगा।
नहीं महाराज जी,
ज्ञान दीजिए,
आपके गुरु ने तो बहुत ज्ञान दिया है। हाँ बेटे, हमारे गुरु ने हमको बहुत ज्ञान दिया है, विद्या के भंडार दिए हैं, लेकिन उससे पहले यह पूछा था कि इस ज्ञान का तू क्या करेगा। जब उन्होंने इस बात का विश्वास कर लिया कि जिस काम में खर्च करेगा तो ज्ञान के भंडार उड़ेल दिए।
मित्रों पैसे की बाबत मैं अपना सबूत अपने गुरु को देता रहा हूँ।
हम अपने घर में 5 आदमी रहे हैं,
हम और हमारी धर्मपत्नी, एक हमारी बूढ़ी माँ जो 92 वर्ष की उम्र पाकर उस समय मरी जब मैं यहाँ आया, 3 हो गए और 2 हमारे बच्चे, कुल 5 आदमी थे हम।
5 आदमियों में 200 रुपये हम मासिक खर्च करते थे, हम गरीब नहीं हैं।
हमारे पास 2000 बीघा जमीन थी, उसका जब पैसा मिला तो हमने उसे गायत्री तपोभूमि में जमा कर दिया। इससे पहले जब हम घर से आए तो हमारे पास 80 बीघा जमीन थी जो 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से बिकी और उससे 4,00,000 रुपया आया।
उस 4,00,000 की दौलत को हमने अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में खर्च कर दिया। हम गरीब नहीं हैं, कंगाल नहीं हैं, बेटे हम अभी भी कुछ काम करने लगे, अपनी कलम की नौकरी करने लगे तो हमको 2000 रुपये महीना कोई भी दे सकता है, अगर हम कलम का इस्तेमाल करें तब। हम क्या लिखते हैं बेटे? हम गजब का लिखते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें और किसी प्रकाशक के लिए लिखने लगे तो 2000 रुपया महीना यहाँ घर बैठे दे जाएगा।
लेकिन बेटे, हमने गरीबी की जिंदगी जी।
क्यों गरीबी की जिंदगी जी? 2000 रुपये में हमने क्यों जिंदगी जी? एक एक पैसा हमने यह समझकर रखा कि यह कितना कीमती है। हम अपने लिए अनावश्यक कामों में, विलासिता में और दूसरी फजूल खर्ची में खर्च कर दें, उसकी अपेक्षा यह पैसा कहाँ खर्च हो सकता है? इसका क्या उपयोग हो सकता है?
उसको प्राथमिकता दें। हमारी अकल ने यह अध्यात्म हमारे ऊपर लाद दिया। अध्यात्म की कसौटी। मित्रों,
अध्यात्म उस कसौटी का नाम है कि जो कुछ मिला हुआ है उसकी पात्रता पहले साबित करनी है।
नई चीजें मत मांगिए, अपना मुंह बंद कीजिए।
सबसे पहले आप यह बताइए कि आप करेंगे क्या। हम जबान की बात भी नहीं मानते। पहले आप सबूत दीजिए कि आपका व्यक्तित्व इस लायक है कि आप कोई कीमती चीजें भगवान के दिए हुए अनुग्रह को पा करके हजम कर सकते हैं या उन्हीं कामों में खर्च कर सकते हैं जिसके लिए कि भगवान एक अथवा देवता दिया करते हैं और दे रहे हैं और देंगे, उसमें आप खर्च करेंगे। इसका जवाब दीजिए। बेटे, इसका परिणाम क्या हुआ? हमने एक एक पाई को इस तरीके से खर्च किया कि एक पैसा भी हीरे का होता है, मोती का होता है, जवाहरात का होता है। हमने बहुत किफ़ायतदारी की है। कई बार लोगों ने कहा कि आपको 16 घंटे काम करना पड़ता है, दिमागी काम करना पड़ता है,
आपकी खुराक कुछ होनी चाहिए।
मैंने कहा कि हम भगवान का काम करते हैं तो भगवान खुराक देगा ही।
किसी ने माताजी को बता दिया कि आचार्य जी को एक गिलास नारंगी का जूस दिया कीजिए।
जाने कैसे उनकी समझ में आ गया,
वे एक दिन ले आई।
कई बार तो मैंने मना कर दिया,
फिर मेरा भी मन आ गया कि शायद कुछ फायदा हो जाए और ज्यादा काम कर सकूं। मित्रों, ऐसी मेरी अकल ने गवाही दी।
मैंने पहला चेक पिया और मुझे उल्टी हो गई। मेरे ईमान ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि जिस गायत्री तपोभूमि में हम इतने सारे कार्यकर्ता रहते हैं, जो अपना घर छोड़कर आए हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है, जो रूखी रोटी खाते हैं, वे रूखी रोटी खाते रहें और हम संतरे का रस पिए, यह कैसे हो सकता है?
बेटे, उल्टी हो गई।
दोबारा मैंने गले में उंगली डाल करके फिर उल्टी करने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे गले में और संतरे का रस रह गया हो। जब मुझे विश्वास हो गया कि उल्टी से रस पूरी तरह से निकल गया है, तो मैंने एक दिन का उपवास किया और सोचा फिर नहीं पीऊंगा, तो क्या बात थी। किसी ने नहीं दिया था, नहीं, किसी ने नहीं दिया था। हमने पैसे से लिया था, अपने पैसे से नारंगी खरीदी थी। फिर आपने क्यों नहीं खाया? बेटे, हम नहीं खा सकते थे क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस धर्म और संस्कृति में रहते हैं, वे सब हमारे भाई हैं। गांधी जी की पत्नी किसी गांव में सफाई की शिक्षा देने गई तो गांव वालों ने यह कहा कि आप हमें सफाई की नसीहत देने आए हैं, पर यह बताए कि हमारे पास एक ही धोती है, इसमें से आधी को हम धो लेते हैं और आधी को पहन लेते हैं,
फिर आधी को धोते हैं। अब आप बताए कि हम सफाई धुलाई कैसे कर सकते हैं।
कस्तूरबा ने गांधी जी को बताया कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ इतने गरीब लोग रहते हैं।
गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उसी दिन से आधी धोती पहनना और आधी धोती को ओढ़ना शुरू कर दिया।
उन्होंने कहा कि जब हम लाखों करोड़ों लोगों को खुशहाल नहीं बना सकते, जब तक पैसे वाले नहीं बना सकते, तब तक हमको हक नहीं है कि हम अच्छी जिंदगी जिएं, अच्छी मौज करें, मजा करें, विलासिता भरा जीवन जिएं।
करुणा का विकास, सच्चा तप। मित्रों, तपश्चर्या यहाँ से प्रारंभ होती है।
नहीं साहब,
मैं तो एकादशी के दिन उपवास करूँगा, चांद्रायन व्रत करूँगा। हाँ, तू जरूर चांद्रायन व्रत करेगा और एकादशी का व्रत करेगा। निष्ठुर कहीं का, तू क्या एकादशी का व्रत करेगा?
यह तो बेटे करुणा से ताल्लुक रखता है। तेरे अंदर क्या इतनी करुणा है कि दूसरे आदमी जिनको सहायता की आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तू अपनी विलासिता के मुकाबले में क्या महत्व देता है और क्या तरजीह देता है? अपनी बीबी के लिए 5000 रुपये की हीरे की अंगूठी खरीद करके लाया, ठीक है, पर मैं यह पूछता हूँ कि 50 रुपये में एक अंधी बुढ़िया की आंख का ऑपरेशन हो सकता था,
मोतियाबिंद का इलाज हो सकता था।
बेचारी बुढ़िया 50 रुपये का इंतजाम न कर सकी, सो बची हुई जिंदगी में अंधी बन करके रही। अगर तूने 50 रुपये प्रति बुढ़िया के हिसाब से खर्च कर दिया होता तो 100 बुढ़ियाओं की आंखों में रोशनी पैदा हो गई होती।
बेटे, तूने 5000 रुपये की अंगूठी खरीदी है,
अपने पैसे से लाया है, चोरी की तो नहीं है? लेकिन चोरी की हो तो क्या और अपनी हो तो क्या?
पैसा तुझे मिला था,
तूने इसे कैसे खर्च किया और कहाँ खर्च किया, पहले यह बता दे।
तूने अकी कहाँ खर्च की, मशक्कत कहाँ की, तूने समय कहाँ खर्च किया, इसका जवाब दे।
अगर इसके पास कोई जवाब है तो भगवान की तरफ से, सिद्ध पुरुषों की तरफ से, देवताओं की तरफ से मैं आपको वचन दे सकता हूँ और आपको शपथ दे सकता हूँ कि हम आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और हम आपको मालदार बना देंगे। लेकिन अपने लिए मालदार बनने के लिए विलासी, लोभी, मोह में डूबा हुआ छोटा आदमी और घटिया आदमी उल्टा चलता है। वह देवताओं से मांगता है।
देवता तुझे क्या देंगे?
नहीं साहब,
हमको मालदार बना दीजिए। बेटे,
मालदार बनना तेरी अकी के ऊपर है। देवताओं के पास मत जाना, नहीं तो तेरी पिटाई होगी।
मित्रों,
क्या होता रहा है?
मेरे गुरु मुझे बराबर अनुदान देते चले गए।
पैसे की दृष्टि से जब उनने जान लिया कि इस आदमी के हाथ में पैसा देने से कोई जोखिम नहीं है, पैसों का इस्तेमाल ठीक से करेगा, फिर तो बेटे पैसा मेरे ऊपर कहाँ से बरसता हुआ चला गया। अपनी जिंदगी में मैंने करोड़ों रुपया खर्च किया,
1,000 कुंड के यज्ञ किए।
जब मैं मथुरा से विदा हुआ था, तब 5 प्रांतों में 5 हिंदी भाषी और मिलते जुलते प्रांतों में 1,000 कुंड के यज्ञ हुए थे। मैं समझता हूँ कि कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें 5,00,000 रुपये से कम खर्च हुआ हो।
बेटे,
मैंने एक साल में करोड़ों रुपये खर्च करा दिए। गांधी जी को तो करोड़ों रुपये आते थे, लेकिन मुझे करोड़ों तो नहीं आते, पर लाखों की तादाद में मुझे भी जरूर आते हैं। मथुरा में 1,000 कुंडीय यज्ञ हुआ था,
4,00,000 आदमी आए थे, 5 दिन तक रहे थे,
20,00,000 रुपया खाने पीने में खर्च हुआ था और 20,00,000 के करीब ही टेंट में, बिजली में, हवन में और पंडाल में खर्च हुआ था।
कुल 40,00,000 रुपया हुआ था।
यह कहाँ से आया था?
बेटे,
मैं तुझे नहीं बताऊंगा कि कहाँ से आया, कहीं से आया था, लेकिन इंसान का दिया हुआ नहीं था, कहाँ से चला आता है।
ऐसी एक शक्ति है जो प्राचीन काल में भी थी,
त्रेता में भी थी और कलयुग में भी है।
शाश्वत है ये सिद्धांत। मित्रों,
सूरज सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता दो में भी था और कलयुग में भी है।
ज्यों का निकलता है जैसा कि पहले निकलता था और अब भी निकलता है। चंद्रमा रात को ही निकलता था और ठंडा निकलता था।
द्वापर, सतयुग, त्रेता में और अभी भी निकलता है। भगवान अभी भी ज्यों का है। भगवान की परंपरा ज्यों की त्यों है, लेकिन इंसान घटिया होता चला गया। मंत्र सारे वही हैं, गायत्री मंत्र वही है, गायत्री मंत्र और कोई नहीं है। जो विश्वामित्र के पास था, वशिष्ठ के पास था, वही है, परंतु बटिया आदमी इस मंत्र का क्या करेगा? घटिया आदमी के लिए मंत्र भी क्या करेगा?
इसलिए व्यक्तित्व को परिष्कृत करना आवश्यक है। मंत्र की शक्ति देखने के लिए, भगवान की शक्ति देखने के लिए, अध्यात्म की शक्ति देखने के लिए व्यक्तित्व का परिष्कार होना आवश्यक है। आपको मैं यही प्रशिक्षण देता हूँ।
आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, हम अपना करेंगे।
आप स्कूल जाइए और पढ़कर दिखाइए, मेहनत से पढ़िए।
हम बेटे तेरी रोटी का इंतजाम करेंगे और तेरे लिए किताब खरीद देंगे।
मित्रों,
चलिए अब हम छोटे मुंह बड़ी बात कहते हैं। चलिए, आप जिस उपासना के, जिस साधना के पीछे पड़े हुए हैं, उसे हम पूरी कर देंगे। भगवान जी कैसे पार लगा देंगे?
वे पार लगा देंगे। जब युधिष्ठिर सहित 5 पांडव हिमालय पर गलने के लिए गए, तो उनमें से 4 तो गल गए, पर 1 युधिष्ठिर रह गए। उनको लेने के लिए एक विमान आया। आपको शरीर समेत स्वर्ग को चलना चाहिए। उन्होंने कहा, यह कुत्ता जो हमारे साथ है, उसका क्या होगा?
कुत्ते तो स्वर्ग में नहीं जाते, केवल आप ही चल सकते हैं। कुत्ता नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जा सकते।
आप अपना विमान वापस ले जाइए। विमान वापस चला गया।
दोबारा जब देवताओं की सभा हुई, तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर कहते हैं कि कुत्ते के बिना हम नहीं जा सकते, इसलिए कुत्ते को भी लाना चाहिए।
बेटे,
ना आप कुत्ते हैं और ना हम राजा युधिष्ठिर हैं। हम और आप मित्र हैं और अपनी नाव में बैठा करके हम आपको पार करा देंगे।
मित्रों, हमारे गुरु ने अपनी कमाई का, अपने तप का बहुत सारा हिस्सा हमको दे दिया, अपनी साधना का हिस्सा हमको दे दिया।
हम भी उतने निष्ठुर नहीं हैं कि आपको अपनी साधना का अंश और अपनी उपासना का अंश न दें। जिंदा रहें तो क्या और जिंदा न रहें तो क्या, यहाँ रहें तब और हिमालय पर चले जाएं तब, आपका हक और आपका हिस्सा आपको न दें, ऐसी बात नहीं है।
बेटे,
हम जरूर देंगे, आपका हक भी देंगे और हिस्सा भी देंगे। उस हक और हिस्से से आपको सिद्धियां मिलेंगी। हम वायदा करते हैं कि आपको सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन बात वहीं आ गई कि तू इन्हें हजम कैसे करेगा। हम सिद्धियां देंगे, लेकिन तू हजम नहीं कर सकता। बच्चे को हम सुहन हलवा खिला दें, बादाम का हलवा खिला दें, तो बेटे बच्चे का पेट जाम हो जाएगा।
वह इसे हजम नहीं कर सकता, उसके लिए सुपाच्य चीज देनी चाहिए।
तुझे सिद्धियां दी तो तू हजम कैसे करेगा? यह बता कि मैं आशीर्वाद दिला हूं, तो तू हजम कैसे करेगा? इस जीवन में ही अमृत, पारस, कल्पवृक्ष हैं।
पहले यह सबूत दे दे कि तू हजम कर सकता है, फिर मैं तुझे देना शुरू कर दूंगा। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लोभ के लिए दैवीय शक्तियों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, न मांगा जाना चाहिए, न वे देंगी।
इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको अपनी पात्रता का विकास करना चाहिए। हमारे पास कल्पवृक्ष है।
हम अपना कल्पवृक्ष रूपी जीवन लेकर के आए हैं। अमृत इसी के भीतर भरा दो पड़ा है। पारस इसी के भीतर भरा पड़ा है। अमृत, पारस और कल्पवृक्ष तीनों के इसी शरीर के अंदर भरे पड़े हैं, अगर हम ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल कर सके तब।
मित्रों,
मैंने शरीर की बात आपको बताई, प्राण की बात बताई, हिम्मत के बारे में बताया। हिम्मत का मतलब चोरी डकैती से नहीं है।
कल आपसे मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारी हिम्मत श्रेष्ठ काम करने के लिए होनी चाहिए।
बताया जाता है कि अध्यात्म के मार्ग में बड़ी रुकावटें आती हैं। चारों तरफ से दबाव पड़ते हैं और चारों तरफ से लोग दिखाई पड़ते हैं।
चारों तरफ से बहकाने वाले, फुसलाने वाले लोग जहां कहीं भी जाइए, आपके मार्ग में अड़ंगा अटकाने वाले मिलेंगे। बेशक बेटे,
बड़ी रुकावटें आती हैं। वे कहां से आती हैं? कहीं से नहीं आती, हमारे पड़ोसियों से आती हैं, हमारे घर वालों से आती हैं, हमारे मित्रों से आती हैं और हमारे संबंधियों से आती हैं। वे ही अभागे हमको बार बार यही कहते हैं कि आपको अच्छे कामों से बाज आना चाहिए और सारी जिंदगी आपको चालाकी और बेईमानी के और किसी काम में खर्च नहीं करनी चाहिए। लोभ मोह के दायरे से जब आप एक कदम बाहर निकलते हैं तो आपके हितैषी शुभचिंतक का बाना पहनने वाले वे ही सबसे बड़े अड़ंगे लगाते हैं और वही व्यवधान बन करके खड़े हो जाते हैं। हर कदम पर परीक्षा है।
यहाँ मित्रों, हमारे मन की कमजोरियाँ भी रुकावट पैदा कर देती हैं।
कहती हैं कि अरे साहब, क्या रखा है इन बातों में, चलो अपना दो पैसा कमाएंगे और मौज करेंगे। भजन वजन तो ऐसे ही तमाशे की चीज है, इससे क्या फायदा है।
बेटे, हमारी कमजोरियाँ भी रुकावट डालती हैं, हमारे शुभचिंतक भी रुकावट डालते हैं। ये दो हो गए, रुकावट डालने वाले और तीसरा भगवान भी रुकावट डालता है, क्योंकि भगवान भी ऐसा भला आदमी कहाँ है। वह भी यह देखता है कि पहले इस व्यक्ति का इम्तहान ले लो, ठोक बजा लो।
टके की हांडी हम खरीदते हैं तो ठोक बजा करके खरीदते हैं। क्या पीट रहे हो?
मिट्टी की हांडी पीट रहे हैं।
क्या मामला है, क्यों पीटते हैं आप? इसलिए पीटते हैं कि अगर कहीं हांडी टूटी हुई तब, दरार हुई तब, अगर दरार हुई तो जरा सा ठोकने पर हमें शक हो जाता है और हम उसे अलग रख देते हैं।
अब तो वे रुपये रहे नहीं जो पहले चांदी के थे। लीजिए साहब, दो रुपये, टन टन।
आप यह क्या कर रहे हैं? ठोकर मार रहे हैं।
किस लिए?
इसलिए कि पहले देख लें कि यह खरा है या खोटा है। खोटा हुआ तब, खोटा हुआ तो हम नहीं लेंगे।
पहले जमाने में रुपया बजाने के लिए जिनके अंगूठे में दम होता था, वे अंगूठे से बजाया करते थे।
इसे हमने देखा था, जिनके अंगूठे में दम नहीं था वे यूं ही उछालकर पत्थर पर टन टन पटकते जाते थे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इस तरह क्रम से पटकते जाते थे और खरे खोटे की पहचान कर लेते थे। अरे साहब,
यह खोटा है, इसे वापस लीजिए। मित्रों,
भगवान भी ऐसे ही दुकानदार का नाम है, जो सिक्का अपना लेता है पहले उसे ठोकता बजाता है। वह भी एक मुसीबत है।
साहब, यह 5 तोले का जेवर है, आप खरीद लीजिए। लाए, पहले दिखलाए।
किस भाव का है?
पहले बैठ जा, फिर बताएंगे।
क्या करता है? पहले अंगीठी में डालता है, फिर कसौटी पर कसता है, तब बात करता है।
पहले दाम बताइए बेटे।
पहले हम दाम कैसे बता सकते हैं? पहले कसली कि यह लोहे का है या पीतल का है? नहीं साहब, आप तो दाम बता दीजिए, जैसा भी कुछ है। नहीं बेटे,
पहले ठोंकना बजाना पड़ेगा। ठोकने बजाने वाली प्रक्रिया न जाने क्यों लोगों ने भुला दी।
न जाने क्यों इसकी आवश्यकता नहीं समझी। न जाने क्यों उपेक्षा करने लगे कि हमारा व्यक्तित्व गंदा बना रहे तो बना रहे। हम तो भजन करेंगे और भगवान की कृपा पाएंगे। बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। कल मैं यह बता रहा था कि भौतिक जीवन में सफलताएं पाने के लिए 3 वृक्षों की आपको साधना करनी पड़ेगी। 3 देवताओं की साधना आपको करनी पड़ेगी,
जिसमें एक का नाम मैंने आपको बताया था, शरीर।
जब आप निरोग होंगे तो पैसा भी कमा सकते हैं, स्वास्थ्य भी कमा सकते हैं, मौज मस्ती और विलासिता भी कर सकते
हैं,
रोटी भी हजम कर सकते हैं, दंगल में भी पछाड़ सकते हैं, वैरी का मुकाबला भी कर सकते हैं।
मित्रों,
सिद्धियां और चमत्कार शरीर के हैं।
महाराज जी,
ये सिद्धियां और चमत्कार शरीर के हैं तो इन्हें भगवान देगा।
हाँ बेटे, भगवान देगा, लेकिन भगवान का पूजन केवल वस्तुओं से नहीं हो सकता,
गुणों और कर्मों के द्वारा होता है। भगवान का पूजन जो हमारे शरीर में कर्मरूप में रहता है, उसका पूजन हमको संयम के आधार पर और श्रम के आधार पर करना चाहिए। श्रम और संयम इन दो आधारों पर आप शरीर के देवता की उपासना कर सकते हैं, तो बेटे, वह आपको निहाल करेगा, आपको मालदार बनाएगा,
आपको समृद्ध बनाएगा, सशक्त बनाएगा।
यही तो हम आपको सवेरे के कुंडलिनी योग में सिखाते हैं। कल हम आपको यह सिखा रहे थे कि सांसारिक सफलताएं बाद में जाकर के तो आध्यात्मिकता में भी शामिल हो जाती हैं। सफलताएं किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, आगे जाकर के आध्यात्मिकता में प्रवेश कर जाती हैं।
चलिए अब तो मैं वहां आ गया। कहां?
चोर और डाकुओं पर आता हूं। चोर डाकुओं की डकैती की सफलता की वजह से उन्हें जेल हो जाती है, निंदा होती है और जो रुपया कमा करके वे ले आते हैं वह साहस की कीमत पर लेकर के में आते हैं।
यह साहस का एक आध्यात्मिक गुण है।
साहस की कीमत पर लोग जंगलों में चले जाते हैं और रात में पड़े रहते हैं, वीराने में पड़े रहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, अकेले चलते रहते हैं।
मारपीट हो जाए तो, कोई कुछ छीन ले तो, सिर काट डाले तो, कुछ भी हो सकता है, पर हिम्मत सो।
हिम्मत के आधार पर डाकू से लेकर चोर तक और जेबख्तरों से लेकर बेईमानों तक सब हिम्मत के आधार पर रोज दुस्साहस करते हैं और कमा कर लाते हैं। बेटे, यह साहस है, तू समझता नहीं है क्या?
आध्यात्मिकता का आधार साहसिकता। मित्रों,
यही साहस है जो आगे जाकर के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो जाता है, तो सारी दुनिया एक और एक रहती है और हिम्मत वाला आदमी एक और रहता है। समर्थ गुरु रामदास जी की शादी होने लगी तो उन्होंने कहा कि हमको अपनी जिंदगी अच्छे कामों के लिए व्यतीत करनी है, पर यह सलाह कौन देगा?
सारे के सलाहकार एक और, मौसा मौसी, नाना नानी, दादा दादी सब एक कोने पर खड़े रहे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, अपनी जिंदगी से मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है, तो यह परिवार रोज संभालूंगा या समाज को, देश को संभालूंगा। बस समर्थ गुरु रामदास को ख्याल आ गया और वे छलांग मारकर ये गए वो गए।
पकड़ना पकड़ना, वे खेतों में होकर भाग गए।
बेटे,
यह बात हिम्मत और कमाल की है। किसी सिद्धांत और आदर्श को पूरा करने के लिए आपके भीतर हिम्मत है। रोज विचार करते हैं और रोज कांप जाते हैं।
हिम्मत के धनी चाहे वे डकैत हों, चाहे समर्थ गुरु रामदास हों, चाहे वे शंकराचार्य हों,
अथवा कोई और हों, चाहे वे नेपोलियन बोनापार्ट हों, सफलताएं हिम्मत के ऊपर टिकी हुई हैं।
प्राणवान का अर्थ है साहसी और हिम्मती। मित्रों, हिम्मत को मैंने प्राणमयकोश के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की थी।
अध्यात्म की भाषा में इन चीजों के अच्छे अच्छे और रहस्यमय नाम बना दिए गए हैं। प्राण क्या होता है?
बेटे,
इसी को प्राण कहते हैं, जिसका नाम है साहस और हिम्मत।
मैंने आपको बताया था कि हमारा प्राणमयकोश ही हिम्मत वाला शरीर है।
तांतिया डाकू की बड़ी हवा थी।
उसको 150 वर्ष की जेल हुई थी।
जिन दिनों वह जेलखाने में था तो लोगों ने जेलर से कहा कि साहब,
हमको भी दिखा दीजिए।
अच्छा, जेलखाने में दिखाएंगे। एक दिन जेलर ने कैदियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि यह है तांतिया।
उसका नाम कुछ और था। तांत माने रुई धुनने की दुबली पतली रस्सी होता है। वह ऐसा ही दुबला पतला था, लंबे बांस जैसा दुबला था, हड्डियां चमड़ी तक दिख रही थी।
तांतिया डाकू यही है? हाँ, यही है। इसने सैकड़ों डकैतियां डाली हैं। सब लोगों ने कहा, साहब, यह तांतिया नहीं है। न जाने किसने कैसे इस पर मुकदमा चला दिया, यह तांतिया नहीं हो सकता। यह इतने बड़े कांड और कमाल कैसे कर सकता है? तांतिया डाकू ने कहा, हजूर, अगर थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्म दे दें और मेरी हथकड़ी खोल दें, तो मैं अपना कमाल दिखा सकता हूँ। कमाल दिखाए, क्या दिखा सकते हैं? लोगों ने देखा कि चारों तरफ जेलखाना है। इतनी बड़ी ऊंची दीवार है, चारों तरफ बंदूक वाले सिपाही खड़े हैं। यह क्या कमाल दिखाएगा?
दिखाए।
बस जिस तरह से मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती चली जाती है, ऐसे ही वह भागता हुआ चला गया और 12 फुट ऊंचाई वाली दीवार के ऊपर जा बैठा और बोला, बताए हजूर,
उछल करके इधर को आऊं या उधर को जाऊं?
जेलर ने कहा, इधर को ही आ जाए, उधर मत जाओ। उधर में आपके लिए भी जोखिम है और हमारे लिए तो है ही। दोनों के लिए जोखिम है, इसलिए भलाई इसी में है कि आप इधर ही आ जाए। वह कूदकर इधर आ गया।
तांतिया डाकू कमाल का था। मित्रों,
हिम्मत किसी में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, अगर आपके भीतर हिम्मत हो तब। वास्तव में यह शरीर की गलती नहीं है, असल में कमी है आपकी हिम्मत की। हिम्मत वाले आदमी न जाने दुनिया में क्या क्या कमाल करते गए, न जाने कहां से जाते रहे।
बेटे,
उसी हिम्मत के लिए मैंने प्राणमयकोश की साधना के लिए आपसे कहा था। मनोमय कोश अर्थात मन, जिसको आप निगृहित कर सकें, संग्रहित कर सकें और उसे एक काम में लगा सकें। कल मैंने आपसे ईमानदारी की बात कही थी और आपसे तन्मयता एवं जिम्मेदारी की बात कही थी, जो मन लगाकर काम करने की बात थी।
इसको साध लेने पर आपको सांसारिक जीवन में जरूर सफलता मिल जाएगी।
यह तीन कोश स्थूल हैं। अगर आपको सांसारिक जीवन की सफलताएं पानी हो तो आपको इन तीनों को ठीक करना पड़ेगा। आपको शरीर की दृष्टि से संयमी होना पड़ेगा और अपनी हिम्मत की दृष्टि से साहसी होना पड़ेगा और मानसिक दृष्टि से अपने कामों में तन्मय हो जाने वाला जिम्मेदार और ईमानदार आदमी बनना पड़ेगा। इतना काम अगर आप कर सकते हो तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी।
जिम्मेदारी है आध्यात्मिक गुण। मित्रों, कल मैंने आपको बाटा का नाम बताया था।
वेस्टर्न वॉच कंपनी का नाम भी मैं कभी कभी लिया करता हूँ, जिसका शेयर किसी जमाने में 100 रुपये का था और अब 2000 का है।
वह कंपनी अब 20 गुना ज्यादा मुनाफा कमाती है।
इसलिए कमाती है कि उसने ईमानदारी और मशक्कत के साथ में ध्यान देने के साथ काम किया।
दूसरी घड़ियां बनाने वाली कंपनियां ऐसे ही उल्टी पुलटी घड़ियां बनाकर बेच देती हैं।
कोई ठिकाना नहीं है कि फास्ट चलेंगी या स्लो चलेंगी। वेस्टर्न वॉच कंपनी के ऑफिस की दीवारों पर घड़ियां टंगी रहती हैं और अगर 24 घंटे में 1 सेकंड का भी फर्क पाया जाता है तो घड़ी उतार ली जाती है और रिबिल्ट करने के लिए भेज दी जाती है। जब ठीक हो जाती है तो फिर से दीवार पर टांग दी जाती है। 24 घंटे में फिर भी अगर 1 सेकंड का फर्क पाया गया तो तब तक वह कंपनी में 100 बार टेस्ट होगी और जब तक 100% ठीक नहीं होगी रिलीज नहीं की जाएगी।
यही विश्वास, ईमानदारी और जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए।
आप ज्यादा मुनाफा कमा भी लें, चलिए मैं यह भी मानता हूँ, तो भी कोई आदमी मना करने वाला नहीं है। वेस्टर्न वॉच कंपनी की घड़ी के लिए लोग खड़े रहते हैं कि इस कंपनी की घड़ी कब आएगी।
साहब,
कोटा थोड़ा है।
इस महीने तो नहीं, अगले महीने के लिए।
आपका ऑर्डर नोट कर लेते हैं।
आप अगले महीने पता लगा लेना, आएगी तो आपको भी दे देंगे।
हर डीलर यही कहता है।
मित्रों,
इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यही है कि किसी काम में आप जिम्मेदारी और तन्मयता को मिला सकते हो तो फिर आप कमाल देखिए, गजब के चमत्कार देखिए, सिद्धियां देखिए। बेटे, यही सिद्धि है, यही चमत्कार है।
लौकिक जीवन में, भौतिक जीवन में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये 3 कोश हैं जो आदमी को सांसारिक सफलताएं दिया करते हैं। 2 कोश और हैं जिनको हम आध्यात्मिक कोश कहते हैं। इनका नाम विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश है। ये दोनों वे कोश हैं जो मनुष्य को देवता बनाते हैं,
मनुष्य से भगवान बनाते हैं और मनुष्य का स्तर अवतारी जैसा, ऋषि जैसा, देवात्मा जैसा, महामानव जैसा बना देते हैं।
ऐसा बना देते हैं कि भगवान उसके ऊपर छाया करते हुए चलते हैं। किस तरह से? बॉडीगार्ड के तरीके से, पायलट के तरीके से आगे आगे चलते हैं और अंगरक्षक के तरीके से पीछे चलते हैं। P00 और सेक्रेटरी के तरीके से, जैसे मिनिस्टरों के P00 और सेक्रेटरी दाएं बाएं चलते हैं, उसी तरीके से भगवान हमारे चारों तरफ चलते हैं अगर हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो जाए तब। विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं?
बस बेटे,
हृदय में ध्यान कर, उसमें ऐसी ऐसी हलचलें हो रही हैं।
तो महाराज जी,
इससे हो जाएगा? नहीं बेटे, इससे नहीं होगा।
फिर क्या होगा?
आप अपने जीवन में हृदय चक्र को जगाए, जिसको जागृत करने के लिए हम आपसे कहते हैं।
आप अपनी सहृदयता को जगाए। महाराज जी, अगर हम अपनी सहृदयता को जगा लेंगे तो लोग हमको ठग ले जाएंगे और हमसे नाजायज फायदा उठा लेंगे। हाँ बेटे,
यह भी संभव है।
यह भी जोखिम है, लेकिन आखिर में अगर समझदारी से काम लेगा तो लोग अनुचित फायदा नहीं उठाएंगे। जो आदमी उसके पात्र हैं वही फायदा उठाएंगे। चलिए एक बार के लिए मैं यह भी मान लूं कि आपसे कोई अनुचित फायदा उठा ले जाएगा तो भी आप नफे में रहेंगे। कैसे? साई, आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए।
चलिए गलती से, बेवकूफी से ठग भी जाएं और आप घाटे में भी रहें, तो भी मैं यह कहता हूँ कि आप शालीनता की वजह से, सज्जनता की वजह से, जो शालीनता और सज्जनता की प्रतिक्रिया होगी उससे आप निहाल होते हुए चले जाएंगे और जो व्यक्ति आपसे अनुचित लाभ उठा ले गया है वह मरेगा, वह नष्ट होगा और वह हजम भी नहीं कर सकेगा और समाप्त हो जाएगा।
बेटे, आपकी सज्जनता आपके लिए फिर भी बनी रहेगी।
इसका मतलब यह नहीं है कि मैं यह कहने जा रहा हूँ दुष्टों को और दुराचारियों को, ठगों को और बेईमानों को आपको मदद करनी चाहिए, हिमायत करनी चाहिए और उनके साथ पेश आना चाहिए। नहीं बेटे, मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा हिमायती नहीं हूँ। मैं तो उन्हीं लोगों में से हूँ जो हमेशा से यह कहते रहे हैं कि अपनी अंदर की प्राण शक्ति जगाकर आत्मावलंबी बनिए, धर्म की स्थापना में सहायक बने।
मित्रों,
भगवान के अवतार 2 उद्देश्यों को लेकर के हुए हैं, एक अधर्म का नाश करने के लिए और दूसरा धर्म की स्थापना करने के लिए।
आपको धर्म की स्थापना से बहुत ही प्यार होना चाहिए।
सहकारी होना चाहिए और सहायक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, लेकिन जहां आपको अनीति दिखाई पड़ती हो वहां आपको बड़ा क्रोधी होना चाहिए।
वह क्रोध भी आध्यात्मिकता में शुमार है। मन्यूरसी मेन्यू में देही। हे भगवान, आप मेन्यू हैं और हमको मेन्यू दीजिए।
आप क्रोध करने वाले हैं और हमको आप क्रोध करना सिखाए। आप रुद्र हैं और हमको रुद्रपन सिखाए, ताकि हम अनीति के विरुद्ध, अवांछनीयता के विरुद्ध, चाहे वह हमारे भीतर निवास करती हो, चाहे हमारे व्यवहार में, चाहे हमारी वाणी में निवास करती हो, अथवा हमारे पड़ोस में, समाज में, कहीं भी निवास करती हो, हम अनीति से जरूर लड़ेंगे। हम किसी भी तरीके से नहीं मानेंगे।
भगवान राम ने जहां मर्यादाओं की स्थापना की, भाई के लिए राज्य दे दिया, जहां श्रेष्ठता ही है वहां सब कुछ किया, पर जहां ऋषियों के अस्थि समूह को देखा तो दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा की, निश्चय हीन करूं महीभुज उठाए पंकीन। सुनी रघुवीर नयन जल छाए।
भगवान की आंखों में जल आ गया। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि जिन लोगों ने ऋषियों की हड्डियों को जमा किया है, जिन्होंने ऋषियों को खाया है, सताया है, उनको हम निश्चय हीन करूं मही, अर्थात निश्चरों को हम पृथ्वी पर रहने नहीं देंगे।
मित्रों,
यह मेन्यू है और जरूरी भी है। यह आध्यात्मिकता का एक अंश है, अंग है। हम समग्र आध्यात्मिकता को विकसित देखना चाहते हैं और जीवंत देखना चाहते हैं,
इसलिए बेटे आपको सिखाते हुए चले आ रहे हैं। अगर आपको भौतिक उन्नति की आवश्यकता हो तो आपको अपने शरीर, मन और प्राण, इनको सशक्त और समर्थ बनाना चाहिए।
आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त करना हो तो कोमलता के साथ में, करुणा के साथ में जो कोष जुड़े हुए हैं उन्हें जागृत करना चाहिए। उन्हें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले यह बताऊंगा कि संसार आपके ऊपर छाया हुआ है।
संसार की सफलता आपके ऊपर हावी है तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए, फिर उसका कमाल देखिए। बेटे,
मुझे तो अपनी सांसारिक सफलता की बाबत याद है। मेरी जो कुछ भी सांसारिक सफलता आपको दिखाई देती है, गुरुजी में कोई सांसारिक चमत्कार है और सांसारिक विशेषताएं हैं, उनका कारण क्या है?
गुरुदेव के सांसारिक गुरु। मित्रों,
सांसारिक सफलताओं की यह शिक्षा मेरे गुरु जो हिमालय पर रहते हैं उनकी दी हुई नहीं है।
उनकी तो दूसरी शिक्षाएं हैं, लेकिन सांसारिक शिक्षा देने वाले मेरे एक सांसारिक गुरु भी हैं।
मेरे कई गुरु हैं।
दत्तात्रेय के 24 गुरु थे।
24 तो नहीं, पर मेरे भी कई गुरु हैं। उनमें से एक गुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे सांसारिक सफलताओं का है रहस्य ऐसे तरीके से समझा दिया कि मैं सांसारिक दृष्टि से अगर सफल हूं तो उसका सारा श्रेय उसी आदमी को मिलेगा जिसने मुझे वह नसीहत दी।
सांसारिक सफलता की नसीहत किसने दी? बेटे, तब मैं 13-14 वर्ष का रहा होऊंगा।
उन दिनों सन 1921 में आरंभ हुआ स्वराज्य आंदोलन बड़े जोरों से चल रहा था और गांधी जी के बारे में गांव गांव में बड़ी अफवाह थी। एक अफवाह यह थी कि गांधी जी में बड़ा जादू है, बड़ा चमत्कार है। उन्हें अंग्रेज पकड़ते हैं और वे जेलखाने में से भाग जाते हैं। गांधी जी जहां कहीं भी जाते हैं हर आदमी उन्हें माला पहनाता है और खूब रुपया बरसाता है। मेरे मन में भी बैठे बैठे एक दिन बात आई कि मुझे भी कोई गिरफ्तार करे और मेरी माँ मुझे पकड़े तो खटाक से छुड़ाकर भाग जाऊं। ऐसा हो जाए तब, और मास्टर साहब जब किसी दिन गलती हो जाए और पकड़ने के लिए आए तो मैं खट से गायब हो जाऊं, जैसे गांधी जी जेलखाने में से गायब हो जाते हैं। स्कूल में से लड़का कहाँ गया?
भाग गया। बस मजा आ जाए। अगर मुझे भी यह सिद्धि आ जाए तो मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो फूलमाला ही मेरे गले पड़े और जहाँ कहीं भी जाऊँ बस लीजिए रुपये लीजिए रुपये।
फिर मैं नौकरी क्यों करूंगा? क्यों खेती बारी करूंगा? गांधी जी की तरह से मेरे ऊपर रुपया ही बरसेगा।
फिर चाहे जो करूंगा और चाहे जो लाऊंगा। मित्रों, एक दिन मेरे मन में ख्वाब आया कि मैं गांधी जी हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा। फिर विचार आया कि गांधी बनना कौन सिखाएगा? गांधी बनना तो महात्मा गांधी ही सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। मैं गांधी जी के पास जाऊंगा और यह कहूंगा कि महाराज जी, आप सारी जादू विद्या, योग विद्या और प्राणायाम विद्या मुझे सिखा दीजिए तो मैं भी गांधी बन जाऊं।
मेरे मन में कई दिनों तक ऐसे ख्वाब आए, विचार घूमते रहे। फिर मैंने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी कि मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूं और आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं संत बनना चाहता हूं। 14-15 वर्ष का बच्चा था, न जाने क्या क्या है लिख दिया।
वह चिट्ठी साबरमती अहमदाबाद के आश्रम में जा पहुंची और गांधी जी के सेक्रेटरी ने या न जाने किसने जवाब दे दिया। उन्होंने लिखा कि आप आइए और यहाँ आश्रम में 3 महीने रहिए।
बस मैंने अपने घर वालों को, गांव वालों को बुलाया और कहा, तुम सब अब मेरा कमाल देखना, मेरा चमत्कार देखना। 3 महीने बाद आऊंगा और तुम में से कोई मुझे मकान में बंद करेगा
और मैं खट से गायब हो जाया करूंगा।
फिर देखना कि तुम लोग जो कमाते हो या जिसके घर में जो भी पैसा है, जब मैं वापस आऊंगा, तुम लोग सारा पैसा मुझे दे दोगे और खाली हाथ हो जाओगे। लोगों ने कहा, यह तो पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया है। जब गांधी जी का दिमाग खराब नहीं है तो हमारा दिमाग क्यों खराब है?
हम तो गांधी जी बनेंगे। मित्रों,
बस में चल पड़ा। बहुतों ने रोका।
पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया था।
माताजी थीं, पर माताजी की कौन सुनता है। मैं तो चल ही दिया और जा करके साबरमती आश्रम में पहुंचा।
मित्रों,
3 महीने तक मुझे संडास साफ करना, झाड़ लगाना, अमुक काम करना, बर्तन साफ करना, ये सारे के आश्रम से संबंधित काम करने में पड़े, जैसे आप लोग 1 घंटा श्रमदान करते हैं। बस उसी तरह से मुझे 24 घंटे वही काम करना पड़ा।
भजन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा कुछ नहीं।
केवल गांधी जी जब प्रार्थना करते थे, हम भी जा बैठते थे और उनके साथ साथ जो वे कहते, हम भी कहते रहते थे। कुछ हिंदी में बोलते, कुछ गुजराती में बोलते थे। मुझे गुजराती तो आती नहीं थी, वे जो कुछ कहते उसे दोहरा लेते थे।
ऐसे ही 3 महीने निकल गए। फिर मैंने सोचा कि अब कुछ समय बाद घर जाऊंगा, अगर रुकूंगा तो यही सब सिखाएंगे, झाड़ लगाना, संडास साफ करना।
तो मैं क्यों रहूं यहाँ?
मैंने पूछा, ज्यादा दिन रहने देंगे या नहीं?
कहा, जितनी आज्ञा मिलती है उतने दिन ही रहना है। अब मैं विचार करने लगा कि मेरे घरवाले मुझे यह कहेंगे कि मैंने इतना किराया खर्च किया, इतना समय खर्च किया और क्या सीखा, तो क्या जवाब दूंगा। मैं महादेव भाई देसाई के कमरे के पास चला गया।
वे गांधी जी के सेक्रेटरी थे। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मैं छोकरा ही था। महादेव भाई को फुर्सत मिली तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा, क्या बात है, कैसे खड़े हो?
मैंने कहा, मैं कुछ कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं पड़ती है। उन्होंने कहा, आ जाओ और जो कहना है कहो।
मैंने कहा कि मैं इस ख्याल से आया था कि मैं योगी हो जाऊंगा, महात्मा हो जाऊंगा और सिद्धपुरुष हो जाऊंगा, पर 3 महीने में तो कुछ नहीं हुआ।
मेरे वापस जाने के दिन पास आ गए हैं। मैं गांव वालों को, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, यह बात मेरे मन में चल रही है, इसलिए आपके पास आया।
महादेव भाई देसाई ने सूखे मुंह से कहा, देखो भाई,
हम तो उनके सेक्रेटरी हैं, हम तो टाइप करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, न हम सिद्ध हैं न महात्मा।
टाइप करना, चिट्ठियां लिखना सीखना चाहो तो हमारे पास आ जाओ,
हम सिखा सकते हैं। महात्मा बनना हो तो वे ही सिखा सकते हैं। गांधी जी महात्मा हैं, हम तो हैं नहीं। मैंने कहा, साहब,
उन्हीं से मिला दीजिए।
हम कैसे मिल सकते हैं? रामचंद्र जी से मुलाकात के लिए गोस्वामी जी को हनुमान जी की और हनुमान जी से पहले भूत की जरूरत पड़ी। हमें गांधी जी से सीधे कौन मिलने देगा? उन्होंने कहा कि हम आपकी मुलाकात का इंतजाम किए देते हैं।
कल आप गांधी जी के साथ टहलने चले जाएंगे। गांधी जी टहलने के लिए जाते थे तो लोगों को अपने साथ ले जाते थे।
मेरा नंबर लगा दिया।
मैं फाटक पर 5 बजे खड़ा हो गया। गांधी जी टहलने के लिए चले।
उन्होंने इशारा किया और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर वे मेरी ओर मुड़े और मेरी तरफ देखा।
बोले, तुम ही वो लड़के हो जो गांधी जी बनने आए थे, योगी, महात्मा बनने आए थे? हाँ साहब, मैं ही हूँ। अच्छा, तो किसी ने तुमको महात्मा गांधी बनाया कि नहीं बनाया? गांधी जी की शिक्षा?
मित्रों, मैं बच्चा था इसलिए वे भी मजाक करने लगे। नहीं साहब, किसी ने नहीं बनाया। तो क्या क्या सिखाया?
हमने कहा, साहब, सबसे पहले संडास साफ करना सिखाया, झाड़ लगाना सिखाया और कुछ नहीं सिखाया।
तो हम बताते हैं कि जो काम तुम सीखने आए थे, वही काम सिखाने के लिए हमने यह आश्रम बनाया है और जो कुछ भी हम कराते हैं, वह सब उसी का योगाभ्यास है जो तुम सीखना चाहते थे।
क्या मतलब? उन्होंने मुझे एडिसन नामक एक वैज्ञानिक की कथा सुनाई, जिसकी माँ यह चाहती थी कि हमारा लड़का वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन वह इतनी गरीब थी कि पैसे खर्च नहीं कर सकती थी।
वह चाहती थी कि कोई वैज्ञानिक इस लड़के को नौकर रख ले और वैज्ञानिक बना दे, परंतु किसी ने उसकी बात को मंजूर नहीं किया।
एक वैज्ञानिक के पास गई।
उसने कहा कि पहले हम यह देख लें कि तुम्हारे लड़के में वह गट्स है कि नहीं, अगर होगा तो रख भी लेंगे और वैज्ञानिक भी बना देंगे। उन्होंने बच्चे के हाथ में झाड़ थमा दी।
गांधी जी ने यह किस्सा मुझे सुनाया।
लड़के से कहा कि झाड़ लगाओ।
वैज्ञानिक एक कोने में बैठा देखता रहा।
लड़के ने ऐसी झाड़ लगाई कि कमरे के कोने में जहां मकड़ी के जाले थे साफ कर डाले और मेज के जो गुटके होते हैं उन पर जो धूल जम रही थी बारीकी से साफ कर दी।
हर चीज को व्यवस्थित कर डाला।
झाड़ तो रोज लगती थी पर उस दिन की झाड़ से कमरे में गजब की चमक आ गई। वैज्ञानिक ने कहा, ठीक है, इसके अंदर गट्स है और इसे हम जरूर वैज्ञानिक बना देंगे। एडिसन का नाम वैज्ञानिकों में आज अग्रगण्य है।
मित्रों, महात्मा गांधी जी की योगाभ्यास की वह व्यवहारिक शिक्षा मेरे जीवन का अंग बन गई।
आप मुझे लिखता हुआ देखते हैं, आप अपना काम करते रहिए, पास से निकल जाए, घड़ी उठा ले जाए, पैड उठा लीजिए, फिर भी देखेंगे कि मैं उसी मुस्तैदी के साथ अपना काम करता हूँ। मुझे पता नहीं है कि कौन आया और कौन चला गया, मैं पूरी तरह से अपने काम में मुस्तैद रहता हूँ। यह विधि मैंने गांधी जी से सीखी थी कि जो भी मुझे काम करना हो उसी तरीके से करना चाहिए। मेरे स्वभाव में यह हेरफेर, मेरे स्वभाव की यह नवीनता मैंने गांधी जी के आश्रम में जा करके सीखी, जो अभी तक विद्यमान है।
बेटे, उस समय तो मैं गांधी नहीं हुआ, पर उस समय जो मेरी गांधी बनने की इच्छा थी वह 100% पूरी हो गई।
हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों में जहाँ कहीं भी गया और लोगों ने देखा कि आचार्य जी की वाणी सुनने के लिए लोग हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में आते हैं। भीड़ जुटाने के लिए लोग ट्रक, बसें लेकर के जाते हैं, रेलगाड़ियों में फ्री टिकटों का इंतजाम करते हैं, जनता को बुलाते हैं, स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं, CID और पुलिस वालों को जमा कर लेते हैं ताकि नेताजी को मालूम पड़े कि कितनी बड़ी भीड़ है। अभी की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ के मिनिस्टर हुए हैं, किसी ने उनसे कहा कि आचार्य जी के बारे में आपको जानकारी है। अरे साहब, आचार्य जी के बारे में जानकारी क्यों नहीं होगी?
कैसे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हम एक बार दिल्ली से बड़ौदा जा रहे थे, उसी गाड़ी से आचार्य जी बम्बई जा रहे थे।
हमने देखा कि दिल्ली से लेकर के हर स्टेशन पर लोग मिलने आए।
व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि आवश्यकता। मित्रों,
हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी कमी यह है कि हमने अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए कोशिश नहीं की।
अगर आपने अपने व्यक्तित्व को संभालने की कोशिश की होती तो बेटे यही कल्पवृक्ष होता।
कौन सा? हमारा व्यक्तित्व, देवता इसी में निवास करते हैं, भगवान इसी में निवास करते हैं। सारी की सिद्धियां और चमत्कार जिनको आप बाहर तलाश करते हैं, वे बाहर नहीं हैं, हमारे भीतर निवास करती हैं। जिन चीजों की आपको तलाश है और जिन्हें आप चाहते हैं, वे सब अपने ही भीतर समाहित हैं।
कस्तूरी का हिरण चाहता है कि हमको सुगंध मिले।
भागता तो है, दौड़ तो लगाता है, लेकिन वह खाली हाथ रह जाता है। उसकी इच्छा तब पूरी होती है जब वह अपनी नाक को अपनी नाभि से लगा करके चैन से सूंघता है तो महसूस करता है कि खुशबू तो हमारे भीतर से ही आ रही थी।
बेटे,
हमारे भीतर से ही सब कुछ आता है। मुसीबत हमारे भीतर से आती है, बीमारियां हमारे भीतर से आती हैं, क्लेश और द्वेष हमारे भीतर से आते हैं, रोष निंदा हमारे भीतर से आते हैं।
ये प्रतिक्रियाएं हैं।
जिन चीजों को आप मुसीबत समझते हैं वे मुसीबत नहीं है, प्रतिक्रिया है। बीमारी क्या है? हमारे भीतर की गंदगी की प्रतिक्रिया है। मच्छर मक्खी क्या है? कीड़े क्या है? कुछ भी नहीं, गंदगी की प्रतिक्रिया है।
अगर गंदगी बनी रहेगी तो मच्छर जरूर पैदा होंगे, मक्खियां जरूर पैदा होंगी, कीड़े जरूर पैदा होंगे और दूसरी चीजें जरूर पैदा होंगी। गंदगी जब तक आपके पास कायम है तब तक बेटे आपके खिलाफ वाली प्रतिक्रियाएं और परिस्थितियां जरूर आती रहेंगी।
इन्हें कोई नहीं रोक सकता।
अगर रोकना है तो अपने आप को साफ कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए, बाहर की परिस्थितियां ठीक करें। बेटे,
हम सुधार देंगे, लेकिन भीतर वाली परिस्थितियां अगर ज्यों की बनी रही तो बाहर वाली सहायता और बाहर वाले सहकार से आपका कैसे भला हो सकता है?
मित्रों, जो मदद भगवान शंकर ने भागीरथ की थी वही मदद भस्मासुर को दी थी।
जो मदद शंकर जी ने अन्य किसी की होगी वही मदद शंकर भगवान ने रावण की भी की थी।
रावण की मनोकामना पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद दिया, कंस को भी दिया, हिरण्यक्षिपु को भी दिया और कुंभकर्ण को भी दिया, लेकिन अपनी भीतरी कमजोरी की वजह से शंकर जी का वरदान, शंकर जी का आशीर्वाद इनका कुछ भी भला नहीं कर सका। मित्रों,
हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने के साथ साथ यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा आध्यात्मिक जीवन श्रेष्ठ गुणों की वजह से, जिन शालीनताओं की वजह से, जिन विशेषताओं की वजह से उन्नतिशील नहीं हो पा रहा था, उनको हमको कैसे पूरा करना चाहिए। ये दोनों हिस्से अध्यात्म के हैं। अगर आप अध्यात्म के दोनों हिस्से पूरे कर रहे हैं, अर्थात दोष दुर्गुणों का निवारण, निष्कासन और श्रेष्ठ सत्प्रवृत्तियों का अभिवर्धन कर रहे हैं, तो आपके दोनों कदम धीरे धीरे बढ़ते हुए चले जाएंगे और आप इन्हीं दोनों कदमों के सहारे लेफ्ट राइट करते हुए बड़ी से और लंबी मंजिल को पार करने में समर्थ हो सकेंगे।
मित्रों,
आध्यात्मिकता के संबंध में मैं यह कह रहा था कि आप भौतिक जीवन में उन्नति करने के इच्छुक हों तो जो कीमती वाले देवता आपको शरीर और मन के रूप में मिले हुए हैं, आप अपने इस शरीर और मन को ठीक कीजिए,
उन्नतिशील बनिए, सही व्यक्तित्व का विकास कीजिए।
उन्नति के रास्ते पर चलिए और देखिए कि दुनिया आपका सहकार करती है कि नहीं करती है और आपको आगे बढ़ाती है कि नहीं, आपकी मदद करती है कि नहीं। यदि आपका व्यक्तित्व इस लायक होगा तब
आप अगर लोगों से जबरदस्ती सहयोग पाना चाहेंगे तो बेटे काठ की हांडी कितने दिन तक चलेगी, कागज की नाव कितने दिन तक चलेगी।
किसी तरीके से आप चालाकी और जालसाजी से दूसरों का सम्मान पा भी ले, सहयोग पा भी ले तो वह कब तक टिकेगा? वह ठहर नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। चालाकियों में और सब बात अच्छी है, पर यह खराबी भी है कि वे देर तक जिंदा नहीं रह सकती। चालाकियों में यह अच्छाई है कि आपको अच्छाई के रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते से उन्नति करने में समय लगेगा, लेकिन आप बेईमानी के रास्ते से, चालाकी के रास्ते से अपेक्षाकृत जल्दी फायदा उठा सकते हैं, परंतु उसमें कमी एक ही है कि वह ठहर नहीं सकती, बस हवा की में गायब हो जाती है और थोड़े दिनों में वास्तविकता निकलकर सामने आ जाती है। हम अपनी कमजोरियों को, अपनी चालाकियों को, बेईमानियों को देर तक छिपा नहीं सकते हैं, पर अंततः वे खुलती हैं और आदमी को खत्म कर देती हैं,
पहले से भी ज्यादा नीचे गिरा देती हैं। आध्यात्मिक उन्नति का स्थायी मार्ग। इसलिए मित्रों,
मैं यह कह रहा था कि भौतिक उन्नति की आप लोगों में से किसी की इच्छा हो और टिकाऊ इच्छा हो, तब तो आपको इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। टिकाऊ की बात ना हो तो आपकी मर्जी की बात है, तब वह रास्ता भी ठीक हो सकता है। कौन सा वाला? जिसको हम चोरी और बेईमानी का रास्ता कहते हैं। शायद वह भी काम दे जाए, तब अगर पकड़ में आ गया तो बेवकूफी का कहलाएगा।
लेकिन सही रास्ता, जिसमें कोई जोखिम नहीं है और जिसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है, वह है व्यक्तित्व का विकास।
मैंने कल परसों में कितने ढेरों उदाहरण आप लोगों को दिए कि हमको शरीर, मन और अपने व्यक्तित्व को ठीक तरीके से परिष्कृत करना चाहिए। यह किसी तरह से भगवान की पूजा से कम नहीं है। भगवान सत्कर्म के रूप में और सद्भाव के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। अगर हम सत्कर्मों का, सद्भावों का पोषण ठीक तरीके से करते हुए चले जाते हैं तो बेटे, यह भगवान की पूजा है।
मित्रों, भगवान कहाँ है बताइए जरा। साहब,
भगवान वहाँ मंदिर में बैठा हुआ है।
बेटे,
मंदिर में एक खिलौना रखा है, यह छोटा सा हिस्सा ही है, सारा पहाड़ तो नहीं है।
हाँ साहब,
छोटा सा हिस्सा है तो आपने मान लिया, छोटे में ही भगवान को मान सकते हैं।
श्री कृष्ण जी भगवान हैं। हाँ, श्री कृष्ण जी कोई एक इंसान ही तो हैं। ऐसी शक्ल वाले तो लाखों करोड़ों आदमी होंगे। हाँ महाराज जी, होंगे तो सही,
उन्हीं में से तो एक हैं वे। इसलिए तो मैं यह कहता हूँ कि गुणों के रूप में हमें भगवान को मानने में क्या आपत्ति है। जब आप उन्हें शक्ल के रूप में मान सकते हैं, रंग रूप के रूप में मान सकते हैं, तो गुणों के रूप में मानने में क्या आफत है?
बेटे,
हम अपने शरीर में सत्कर्मों के रूप में भगवान को मान सकते हैं और सत्कर्मों को जीवन में धारण करते हुए हम भगवान की पूजा का आनंद ले सकते हैं और भगवान की पूजा से जो वरदान मिलने चाहिए उनको प्रत्यक्ष पा सकते हैं। सत्कर्मों के रूप में, सद्विचारों के रूप में और सद्ज्ञान के रूप में हम भगवान को पा सकते हैं। सत्साहस के रूप में हम उनको पा सकते हैं। इन गुणों को जितना ज्यादा हम अपने भीतर धारण करते हैं, उसके लिए हम जितना साहस करते हैं बेटे, वह सारा का भगवान की उपासना से कम नहीं है, देवता की उपासना से कम नहीं है,
योगाभ्यास से कम नहीं है,
तपश्चर्या से कम नहीं है। अपने आप का संशोधन कर लेना और अपने गुणों का परिष्कार कर लेना सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी उपासना है, सबसे बड़ी पूजा है।
प्रत्यक्ष भगवान का प्रत्यक्ष परिणाम। मित्रों,
अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करते हैं और आपको प्रत्यक्ष परिणाम मिलने चाहिए।
परोक्ष भगवान की पूजा के परोक्ष परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रत्यक्ष उपासना की बात कहता हूँ, प्रत्यक्ष भगवान की बात कहता हूँ,
प्रत्यक्ष मंत्र की बात कहता हूँ और यह कहता हूँ कि आप प्रत्यक्ष का परिणाम प्रत्यक्ष में पाए, प्रत्यक्ष में देखिए। भगवान की दुनिया में कायदा काम कर रहा है, एक कानून काम कर रहा है, एक नियम काम कर रहा है, एक मर्यादा काम कर रही है, आप समझते क्यों नहीं हैं?
यहाँ अंधेर नगरी थोड़े ही है,
यहाँ तो एक क्रम है, एक कायदा है। कायदे और क्रम से अगर आप चलेंगे तो आप पाएंगे कि हम उन्नतिशील होते चले जाते हैं,
फिर आपकी उन्नति को दुनिया के पर्दे पर कोई रोक नहीं सकता।
अगर आप अपने को परिष्कृत नहीं कर रहे हैं तो बेटे, दुनिया की सारी मदद आपके लिए बेकार साबित हो जाएगी,
फिर आप उल्टे मुंह गिरेंगे और आप रोएंगे और पछताएंगे।
इसलिए मैं आप में से प्रत्येक आदमी से यह कह रहा था कि हमारे भीतर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश के रूप में तीन देवता हैं। इन देवताओं से अगर आपको सिद्धियों की आवश्यकता हो तो आप इन तीनों का पूजन करना शुरू करें और तीनों को अपने स्वभाव का, गुण का और कर्म का हिस्सा बनाने का प्रयत्न करें।
मित्रों,
एक और भी देवता है जिसको विज्ञान में कोश कहते हैं। प्रातःकाल हम आपको जो ध्यान कराते हैं उसमें यह बताते हैं कि विज्ञानमय कोश कहाँ हो सकता है।
हृदय चक्र को हमने विज्ञानमय कोश का आधार केंद्र बताया है।
उसमें जब हम आपको अंत में ध्यान कराते हैं तो यह कहते हैं कि सहृदयता जागृत, सज्जनता जागृत। यह क्या है
बेटे? यह भी आदमी का एक योगाभ्यास है और यह भी तपश्चर्या है।